ईरानी संस्कृति और कला।
ईरानी संस्कृति और कला की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, पिछले कार्यक्रमों में हमने कुछ ऐसी इमारतों पर चर्चा की थी जहां शासक और राजा रहा करते थे। इन इमारतों को नगर के भीतर अर्ग कहा जाता था, जबकि शहर से बाहर इस प्रकार की इमारतों को किला कहा जाता था। वैसे कभी कभी किलों में आम लोग भी रहते थे। किलों में प्रायः सरकारी विभाग आदि होते थे। ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के किलों के अवशेष बहुत अधिक मिलते हैं। पिछले कार्यक्रमों में हमने आपको बताया था कि ईरान के प्रसिद्ध किले अलमूद के बारे में, जो तेहरान के निकट कज़्विन नगर के पास स्थित है। आज हम आपको एक अन्य अत्यधिक प्राचीन और मशहूर किले से परिचित करा रहे हैं।
ईरान की राजधानी तेहरान से 1000 किलोमीटर की दूरी पर ईरान का एक ऐसा शहर है जिसे खजूर के पेड़ों और कच्ची ईंट से बने एक किले की वजह से बहुत ख्याति प्राप्त है। बम नामक इस शहर के एक टीले में बम दुर्ग बना है। बम किला दुनिया में कच्ची ईंटों से बनी सबसे बड़ी इमारत है जिसे एक टीले पर बनाया गया है। बम नगर ईरान के प्रसिद्ध नगर किरमान के निकट स्थित है। अर्गे बम प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों के समूह के बीचों बीच में स्थित है। इन इमारतों का इतिहास 3000 साल पुराना है। ये इमारतें बम नगर के उत्तर में स्थित हैं। आरंभिक इस्लामिक काल से संबंधित भी कई ऐतिहासिक अवशेष इस नगर में जगह जगह नज़र आते हैं। इतिहास के अनुसार बम किला इस्फंदियार के पुत्र बहमन से संबंधित बताया जाता है, जो हकामनेशी काल के शासक थे। पुरातत्वविदों के अनुसार इस किले की प्राचीनता की अध्ययनों द्वारा पुष्टि हो चुकी है। इस किले के निर्माण की तारीख 5वीं सदी ईसा पूर्व है और 19वीं सदी के आरंभिक 50 वर्षों तक इस किले में लोग रहते थे।
बम किले का क्षेत्रफल 2,00,000 वर्ग मीटर है और इसके दो भाग हैं। एक भाग शासकों के लिए था और दूसरे भाग को प्रजा इस्तेमाल करती थी। किले के उत्तरी भाग में एक गुंबद वाली इमारत ध्यान अपनी ओर खींचती है। इमारत वास्तव में गर्मियों में पानी के भंडारण के लिए इस्तेमाल की जाती थी। चार मौसमी राजा का आवास, कुआं, हमाम, सैनिक घर और सासानी दरवाज़ा बम किले के महत्वपूर्ण भाग हैं। शासकों का आवास पत्थर के खंभों पर थोड़ा ऊंचाई पर बनाया गया है, जिस पर गारे का लेप लगाया गया है। शासकों के आवास के चारों ओर 38 बुर्जियों के साथ दीवार खींची गई है और इसमें केवल एक द्वार है जो प्रजा के घरों के पास दक्षिण की ओर स्थित है। इस भाग में द्वार, बाजार, मस्जिद, अखाड़ा, कब्रिस्तान, हमाम, स्कूल और अस्तबल भी हैं। बम किले के आवासीय भाग में लगभग 400 घर हैं जिन्हें टेढ़ी मेढ़ी गलियां एक दूसरे से जोड़ती हैं। आम जनता के रहने के स्थान को भी एक दीवार से घेरा गया है और दोनों भागों के बीच एक दरवाज़ा है। आवासीय भाग में घरों को समतल भूमि पर बनाया गया है और नगर निर्माण की दृष्टि से एक नगर के लिए ज़रूरी हर चीज़ वहाँ मौजूद है। कुछ घर बेहद लंबे चौड़े हैं, जहाँ कई आंगन, हवा खाने का विशेष स्थल, अतिथि गृह, सर्दी और गर्मी के अलग अलग कमरे और कुआं इत्यादि होते हैं और लगभग हर घर एक दूसरे घर से जुड़े होते हैं और कुछ घरों में विशेष रूप से हमाम भी बना दिए जाते हैं। रोटी की दुकान, तेल निकालने का कमरा और कपड़े की दुकानों के अवशेष भी नजर आते हैं।
बम किला चूंकि पूरब से पश्चिम जाने वाले मार्ग पर स्थित है, इसलिए यह हमेशा से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। इस किले में होने वाली सबसे ताज़ा ऐतिहासिक घटना किले के शासक मोहम्मद अली खान जाबुली द्वारा लुत्फ अली खान जंद की गिरफ्तारी थी। बम के किले को बहुत पहले ही यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में पंजीकृत किया है और हर साल हजारों देशी व विदेशी पर्यटक इस किले को देखने जाते हैं। 26 दिसंबर सन 2004 में इस इलाके में भीषण भूकंप आया, जिसकी वजह से इस शानदार ऐतिहासिक इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस समय इस इमारत की मरम्मत का काम हो रहा है ताकि उसे यथासंभव पहले जैसा बनाया जा सके।
पिछली शताब्दियों में ईरान के सभी नगरों में किले हुआ करते थे। शिराज नगर तो लंबे समय तक ईरानी शासकों की राजधानी रहा है, इसीलिए इस नगर के मध्य में भी करीम खान का किला स्थित है, जो शाही महल और सैनिकों के रहने की जगह थी। करीम खान फ़ारस क्षेत्र के शासक थे और सन 1766 ईस्वी में उन्होंने इस किले के निर्माण का आदेश दिया था। उन्होंने ईरान के जंद शासन श्रृंखला की नींव रखी थी। करीम खान ने किला बनाने के लिए उस समय के अत्यधिक दक्ष शिल्पकारों और पत्थर तराशने वालों को शिराज बुलाया और उन्हें दक्ष मजदूर तथा मसाले दिए और इस किले का निर्माण अच्छी तरह से कराया।
करीम खान का किला शिराज नगर की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इमारत है। इस किले के 3 भाग हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक। करीम खान किले का निर्माण कुछ इस प्रकार से किया गया है कि जिससे उसे रहने और सैन्य उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग किया जा सके। किले को बेहद सुरक्षित बनाया गया है। इस किले को बाहर से देखकर भय और कठोरता का आभास होता है, किंतु अंदर जाने के बाद ये नज़र आता है कि इसे अत्यधिक सूक्ष्मता और कलात्मक तरीके से बनाया गया है।
करीम खान किले के निर्माण में मुख्य रूप से पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया गया है। किले के चारों ओर ऊंची दीवार है, जिसकी वजह से वो एक सैनिक किला लगता है। ये किला आयताकार है और 15-15 मीटर के 4 बुर्ज उसके चारों कोनों पर बनाए गए हैं। किले के अंदर बड़ी बड़ी दालानें कमरों और कक्षों के सामने बनी हुई हैं, जिसके सामने मजबूती से खड़े पत्थर के खंभे नजर आते हैं। हर दालान के सामने चौकोर हौज भी है, जो जंदिया काल की शिल्पकला का प्रतीक है। किले का प्रवेश द्वार पूर्वी भाग में स्थित है और मुख्य द्वार के ऊपर सतरंगी टाइलों की मदद से रुस्तम और सफ़ेद दानों के युद्ध का चित्रण किया गया है। किले की दीवारों और उसकी नींव को पक्की ईंटों से बनाया गया है। खिड़कियों के फ्रेम यजद के मरमर के पत्थर से बनाए गए हैं, जबकि शीशे से की जाने वाली और अन्य प्रकार की सजावट के साधनों को रूस और तुर्की से लाया गया है। किले के कमरों और उनकी छतों को अत्यधिक सुंदर चित्रों और डिज़ाइनों से सजाया गया है। इन चित्रों को सोने के पानी और विभिन्न रंगों से सजाया गया है। डिज़ाइनों में अधिकतर फूल पत्ती नजर आती है तथा सजावट की शैली अरबस्क है, जो इस्लामी शैली होती है, जिसकी वजह से कमरे के भीतर बाग जैसा वातावरण पैदा हो जाता है। कमरों की दीवारों और खिड़कियों को जालीदार बनाया गया है, जिसमें रंग बिरंगे शीशे लगे हुए हैं। किले में बने हुए हालों पर 2 छतें हैं। एक मुख्य छत है जो ऊंची है और उसे चूने के काम से अच्छी तरह से सजाया गया है।
दूसरी कृत्रिम छत है, जो संभावित रूप से बाद के कमरों की छत नीचे करने के लिए बनाया गया है। उसको सजाने के लिए सोने, पारे और सिनेबर का प्रयोग किया गया है और उसकी सजावट की शैली सफवी काल की चित्रकला से मिलती जुलती है। करीम खान किले की निर्माण शैली 3 दालानों वाली शैली है। کریم خان کے بعد کچھ قاجاری شاسکوں نے ان ڈیزائنوں پر چونے کا پلاسٹر لگوا کر اپنی پسند کا ڈیزائن بنوا دیا۔ کنتو حالیہ ورشوں میں اس قلعے کی مرمت کے دوران بڑی ساودھانی سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کمروں کی دیواروں کا پہلے والا روپ سامنے آ جائے۔
قلعے کے پرانگڑ میں ایک کونے میں ایک سیڑھی ہے۔ یہ سیڑھی دوسری منزل تک جاتی ہے اور وہاں سے گھر کے پچھلے حصے میں استھت پرانگڑ میں جانے کا راستہ ہے۔ یہ پرانگڑ کریم خان کے وشیش اسنان گرہ میں پرویش کا مارگ ہے، جو واسطو میں اس قلعے کی سندرتا میں چار چاند لگاتا ہے۔ اس حمام کو دو بھاگوں میں بنایا گیا ہے۔ اسنان گرہ کے اگلے بھاگ میں کپڑا بدلنے کا وشیش ککش ہے، جس میں ایک پتھر کا حوض بنا ہے جو اشٹکونی ہے، اور اس کی دیواروں اور چھتوں کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جگہ درشنیہ بن گئی ہے۔ کریم خان قلعے کے حمام کو اسلامی اور ایرانی ڈیزائنوں سے سجایا گیا ہے، تتھا اس کے ساتھ ہی پشو پکشیوں کی آکرتی بھی اکیری گئی ہے، جسے حمام کی سندرتا اور بھی بڑھ گئی ہے۔
کچھ آگے بڑھنے پر ایک اپیکشاکرت لمبی دالان ملتی ہے، جس کے بعد حمام کا گرم بھاگ مل جاتا ہے، جہاں گرم پانی کے علاوہ دسیوں سویدھائیں موجود ہیں، جنہیں راجا اور اس کے وشیش درباری ورشوں تک پریوگ کرتے رہتے ہیں۔ اس بھاگ میں بھی خوبصورت ڈیزائن نظر آتے ہیں، جو پتھر کے کھمبوں کے ساتھ ویبھوشالی سندرتا لیے ہوئے ہیں۔ ان سبھی کھمبوں کو دکش شلپکاروں نے سندرتا کے ساتھ تراشا ہے اور اس کے خوبصورت اسلامی ڈیزائنوں سے ادبھت سندرتا پردان کر دی ہے۔ حمام کے گرم پانی والے بھاگ میں تین جل بھنڈار ہیں، جنہیں نہانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حمام کے نیچے پانی گرم کرنے کی ویوستھا ہے، اس لیے حمام کی فرش ہمیشہ گرم ہوتی ہے۔ کریم خان قلعے کے اس بھاگ کو کئی ورشوں سے ایران کے وبھن کھیتروں کی پرمپراگت پوشاکوں کی پردرشنوں کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے۔